नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश में आधुनिक ड्रोन की तस्करी का अंतर्राष्ट्रीय रैकेट पकड़ा। सऊदी अरब ने फंसे 450 भारतीय कामगारों को एग्जिट वीजा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने योग्यता आधारित आवर्जन प्रणाली लागू करने का फैसला किया और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो पहले ही प्रयास में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 59 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रविवार को मतदान होना है। इसमें पश्चिम बंगाल के शेष 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव भी शामिल है, जहां प्रचार कल एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए राज्य में प्रचार एक दिन पहले ही समाप्त करने का निर्णय लिया था। आज प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं और रोड शो करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के प्रचार में अब कुछ और घंटे बचे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज कई नेता चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे।
कल गोरखपुर में अपने रोड शो के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इस चुनाव में वो कोई चुनौती नहीं है। कई भाजपा नेताओं राजनाथ सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जेपी नड्डा और मनोज सिन्हा द्वारा आज विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज मिर्जापुर और पटरौना में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करेंगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भी देवरिया में रैली प्रस्तावित है। विपक्षी गठबंधन की आज मिर्जापुर और चंदौली में रैलियां होंगी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय दल सुप्रीमो अजीत सिंह मौजूद रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
मध्य प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेता अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे।
चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य के खरगोन जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। यह खरगोन में श्री मोदी की पहली रैली है। प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भी आज मालवा निमाड़ा क्षेत्र में रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री कमलनाथ, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और अरुण यादव भी पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
हिमाचल प्रदेश में 4 संसदीय सीट के लिए 45 उम्मीदवार मैदान में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राज्य में चुनाव प्रचार के लिए अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। राहुल गांधी आज सोलन जिले में अपने उम्मीदवार के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में 2 चुनावी रैली को संबोधित कर चुके हैं। इस बीच भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रेस वार्ता कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्य में आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
पंजाब में भी प्रचार जोरों पर है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह होशियारपुर में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में रैली करेंगे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह आनंदपुर साहिब में कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवाड़ी के पक्ष में रैली करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू लंबी में प्रचार करेंगे तो विक्रम सिंह मजीठिया तलवंडी साबो और सुखबीर सिंह बादल गुरु हर सहाय में रैली करेंगे। एएपी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल भी नाभा में रोड शो करेंगे। प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र आज फतेहगढ़ चूड़िया में अपने बेटे संधि जोल के पक्ष में रैली करेंगे। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
सातवें और अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश के 13, पंजाब के सभी 13, पश्चिम बंगाल के 9, बिहार और मध्य प्रदेश के 8, हिमाचल प्रदेश के सभी 4, झारखंड के 3 और चंडीगढ़ के एकमात्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होना है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चांदनी चौक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्र संख्या 32 पर दोबारा मतदान कराने के आदेश दिए हैं। इस केंद्र के पीठासीन अधिकारी 12 मई के चुनाव में परीक्षण मतदान के मतों को वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले हटाना भूल गए थे और अब इस केंद्र पर रविवार को दोबारा मतदान होगा। केरल राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तरी केरल के 4 मतदान केंद्रों पर 19 मई को फिर से मतदान कराने का फैसला किया है। इन मतदान केंद्रों पर 23 अप्रैल को मतदान हुआ था, लेकिन इनमें फर्जी वोटिंग के आरोप लगे थे। निर्वाचन आयोग ने विज्ञप्ति में बताया कि कासरगोड लोकसभा सीट के 3 मतदान केंद्रों और कन्नूर के तालीपरम्बा में 1 मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान होगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने निर्वाचन आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 2 अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से तत्काल प्रभाव से अलग कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन दोनों को चुनाव संबंधी कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। कोलकाता में हाल में हुई चुनावी हिंसा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आम चुनाव से संबंधित विशेष चर्चा जनादेश 2019 प्रसारित कर रहा है।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रतिदिन शाम 4:05 से 4:30 तक सुना जा सकता है।
गुजरात में राजस्व आसूचना निदेशालय ने तस्करी के जरिए भारत में उच्च तकनीक वाले ड्रोन लाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह में पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और भारत के तस्कर शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि निदेशालय ने इस गिरोह के सरगना को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने कई तरह के ड्रोन भी जब्त किए हैं।
DRI के सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की एक कंपनी चीन की कंपनी को यह ड्रोन सप्लाई का ऑर्डर करती है। यह ड्रोन दक्षिण चाइना में म्यांमार की सरहद पर स्थित देहोंग के वेयरहाउस में पहुंचाया जाता है, जहां से म्यांमार के स्मगलर्स उनको म्यांमार में लाते हैं और बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस करके भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहुंचाया जाता है। DRI द्वारा विभिन्न प्रकार के अति आधुनिक ड्रोन भी जब्त किया गया है। इस पूरे रैकेट में पाकिस्तान और चाइना की कंपनियों की भूमिका और अति आधुनिक ड्रोन की देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता बताई जा रही है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
देखो देखो घड़ी है ये, सोनी तना पड़ी है ये, जो समय का पूरा खेल है दूजे हाथ बिना वो फेल है। कुछ ऐसा ही लोकतंत्र है, सब शामिल हो इसका मंत्र है। मतदान हर महिला का अधिकार, वो हर जगह बराबर की हकदार। तो बढ़ चढ़कर आगे आइए, जनतंत्र का फर्ज निभाइए। कोई भी महिला वोट देने से चूके ना। याद रहे इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना।
For more information, log on to nbfc.in or call voter helpline 1950.
महात्योहार है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनहित में जारी।
सऊदी अरब ने वहां फंसे हुए 450 भारतीय कामगारों को वीजा दे दिया है और जल्द ही इन कामगारों का स्वदेश आना शुरू हो जाएगा। सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर औसफ सईद ने कल श्रमिकों के साथ इफ्तार के दौरान ये घोषणा की। एक रिपोर्ट।
गुरुवार के शाम की इफ्तारी सऊदी अरब में कई फंसे हुए भारतीय कामगारों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई, जो पिछले लगभग एक साल से घर वापस जाने का संघर्ष कर रहे थे। राजदूत डॉक्टर औसफ सईद ने अपने अन्य दूतावास के सहयोगियों के साथ इन भारतीय श्रमिकों के इफ्तार में शरीक किया और साथ ही यह सूचना भी दी कि 450 लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये भारतीय श्रमिक सऊदी के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत थे, जो कि अब बंद पड़ी है। डॉक्टर सईद ने हाल ही में भारतीय दूतावास का कार्यभार संभाला है। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि दूतावास बाकी बचे श्रमिकों को भी निकालने के लिए कार्यरत है। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने योग्यता आधारित आवर्जन प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। इससे ग्रीन कार्ड यानी स्थायी कानूनी प्रवास के लिए प्रतीक्षा कर रहे भारतीय पेशेवर और कुशल कामगारों सहित हजारों विदेशी पेशेवरों को लाभ होगा। श्री ट्रंप ने कल रोज गार्डन संबोधन के दौरान यह घोषणा की। इन प्रस्तावों के लागू होने से कुशल कामगारों का मौजूदा कोटा लगभग 12% से बढ़कर 57% हो जाएगा। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कान फिल्म समारोह में भाग लेने वाले देशों के फिल्म आयुक्तों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात के दौरान कुशल पेशेवरों और तकनीशियनों की प्रतिभा के भरपूर इस्तेमाल के बारे में बताया। साथ ही भारत को फिल्म निर्माण से जुड़ी तमाम विधाओं के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने की संभावना के बारे में भी बताया। बैठक में इसराइल ने भारत को यरूशलम फिल्म महोत्सव 2020 में फोकस देश बनाने का प्रस्ताव किया। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 3 मील दक्षिण एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से विमान में सवार 4 लोग मारे गए हैं। इनमें ब्रिटेन के 3 और दक्षिण अफ्रीका का 1 नागरिक था। दुबई के सामान्य नागर विमानन प्राधिकरण GCAA ने कल रात ये जानकारी दी। इस दुर्घटना में विमान में सवार चालक दल के सभी 4 सदस्यों की मौत हो गई। GCAA के अनुसार दुबई में विमानों की आवाजाही सामान्य है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के कमांडो अपने पहले ही प्रयास में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल रहे हैं। 12 सदस्यों की टीम को गृह सचिव राजीव गौबा ने 29 मार्च को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। एक रिपोर्ट।
लेफ्टिनेंट कर्नल JP कुमार के नेतृत्व में 7 सदस्यों की टीम ने 8,848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराया। NSG का पर्वतारोही दल नेपाल के सोलंगखुम्बु क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी रास्ते से होकर शिखर पर पहुंचा। NSG के महानिदेशक सुदीप लखटकिया ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि एवरेस्ट पर फतह हासिल करने के लिए सबसे कठिन परिस्थितियों में कई तरह के कौशलों की जरूरत होती है। टीम के बाकी 5 सदस्यों का 22 मई को चोटी पर पहुंचने का कार्यक्रम है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि क्षेत्रवार स्पष्ट विश्लेषण पर आधारित रणनीतिक निवेश से भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत होगी। वे कल मुंबई में भारतीय उद्योग परिसंघ के पॉलिसी राउंड टेबल चर्चा को संबोधित कर रहे थे। सुरेश प्रभु ने कहा कि अर्थव्यवस्था के समग्र और समावेशी विकास के लिए जिलावार विकास पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अमरीका और चीन के बीच जारी व्यापार संघर्ष के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। ऐसे में भारत के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है और आगे भी होती रहेगी। घरेलू निवेश बढ़ाने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के उपायों पर विचार के लिए इस चर्चा का आयोजन किया गया था। उच्चतम न्यायालय पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक निरस्त करने संबंधी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा। CBI ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि राजीव कुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाना जरूरी है। श्री कुमार इस घोटाले की जांच कर रहे विशेष दल के प्रमुख थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
धन्यवाद लवलीन। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त होने से पहले नेताओं के बीच तीखे शब्दबाण सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण ने लिखा है, राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग और तेज हुई। पश्चिम बंगाल में 20 घंटे पहले प्रचार थमा। जनसत्ता की खबर है, निर्वाचन आयोग का निर्देश, एग्जिट पोल से जुड़े ट्वीट हटाएं। पत्र ने आगे लिखा है कि ये आदेश YouTube, फेसबुक और सभी सोशल मीडिया मंचों पर लागू। ज्योतिष, टैरो कार्ड और चुनावी आकलन पर भी रोक। वीडियोकॉन समूह को दिए गए कर्ज मामले में ICICI बैंक की पूर्व CEO और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच का दायरा बढ़ाने की खबर हिन्दुस्तान में है। अमेरिका में साइबर हमले के डर से राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाया राष्ट्रीय आपातकाल, दैनिक भास्कर सहित अधिकतर अखबारों में है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अनुपम शौर्य, अदम्य साहस और असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन करने वाले सीमा सुरक्षा बल के 11 जांबाजों को 22 मई को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा को देशबंधु सहित कई अखबारों ने दिया है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 7वें अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश में आधुनिक ड्रोन की तस्करी का अंतर्राष्ट्रीय रैकेट पकड़ा। सऊदी अरब ने वहां फंसे 450 भारतीय कामगारों को एग्जिट वीजा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने योग्यता आधारित आवर्जन प्रणाली लागू करने का फैसला किया। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो पहले ही प्रयास में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।